Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये शामे प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ जन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनिषो वातित्रिणं बृहस्पतिरमे दधातु सन्नो भवतु भुवनस्यस्पदिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामे देवाः भद्रं पश्येमा क्षभिर्ययत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शांति शांति। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। तो विचार चल रहा था 14वें श्लोक के ऊपर,
शिव महिमने का
14वें के बाद 15वां श्लोक है। उच्चारण पहले कर लें। असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्निषत्वाम् मितरसुरसाधारणमभूत् स्मराश्मार्ताव्यात्मा न हि वशिशुपथ्य परिभव। 14वें श्लोक में निर्विशेष चैतन्य के ऊपर अविद्या का अध्यारोप किया और इस श्लोक में कामना का नाश और कामना के नाश होते ही ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। 16वें श्लोक में गंगा जी का अवतरण है, मही पादा दिखाता ब्रहती सहसा संशय पदम से। तो शिव महिमन का आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों ही अर्थ है। तो कल हम लोगों ने तो जो चिंतन किया था वह आध्यात्मिक था और इसका यदि हम दैविक चिंतन करें, जैसा कि वेदांत ने बतलाया है कि मायावच्छिन्न चैतन्य का नाम ईश्वर है। दार्शनिक जगत में बड़ा भारी विवाद है कि अविद्या का आश्रय जीव है कि परमेश्वर। कुछ दार्शनिक तो मानते हैं कि अविद्या का आश्रय जीव है और अविद्या का विषय ब्रह्मा, और कुछ ऐसी मान्यता है कि आश्रय विषय दोनों ही ब्रह्म ही है। जीव इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं अहम् अज्ञः, मैं अज्ञानी, मैं मूर्ख, मैं खल, मैं कामी, ऐसा जो हम कथन करते हैं, इससे सिद्ध होता है कि इस अज्ञत्व मतलब कि अज्ञान का आश्रय है जीव। और कहते हैं कि मैं परमात्मा को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता हूं। शास्त्रों से तो सुनने में आता है परंतु नमे भाति, उसका अनुभव नहीं हो रहा। इस अविद्या का विषय ब्रह्मा। इस अनुभूति के द्वारा कुछ दार्शनिक मानते हैं कि अहम आग के द्वारा अज्ञान का आश्रय जीव, और मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं तो ब्रह्म हो गया विषय। परंतु मुख्य वेदांत सिद्धांत है जो विवरणकार, क्योंकि वेदांत में दो धाराएं हैं, भामती और विवरण। तो भामतीकार तो मानते हैं कि विद्या का आश्रय जीव, अविद्या का विषय ब्रह्मा। ये भामतीकार का सिद्धांत है। और विवरणकार के अनुसार अविद्या का आश्रय विषय दोनों ही निर्विशेष चैतन्य है। आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विशेष चैतन्य केवला, पूर्वश्री तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर। अविद्या से उत्तर में सिद्ध होने वाला जो जीव है वह न आश्रय बनता है न विषय बनता है, क्योंकि अविद्या के बाद में अंतःकरण का निर्माण होगा। अंतःकरण की उपाधि वाले को जीव कहते हैं। तो अविद्या तो पहले हुई, अंतःकरण बाद में हुआ, और अंतःकरण की उपाधि वाले को जीव कहते हैं। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव है। तो इसलिए जीव अविद्या का आश्रय नहीं बन सकता है। पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचर, पश्चिम मतलब जो बाद में होने वाला है। यह जीव न अविद्या का आश्रय है न गोचर मतलब विषय है, ऐसा विवरण प्रस्थान की मान्यता है। तो अविद्या का आश्रय आधार और विषय दोनों ही निर्विशेष चैतन्य ब्रह्म है। तो यहां पर जो भगवान साक्षात निर्विशेष शांतम स्वयं अद्वैतम जो शिव तत्व है, उसके ऊपर इस लीला के द्वारा अविद्या का अध्यारोप किया। हलाहल बीस कलमास जो है ना अविद्या है। अविद्या को हम लोग हजम नहीं कर पाते हैं। योग दर्शन में आता है अनित्य असुचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अविद्या को परिभाषित किया है कि जो अनित्य में नित्यत्व बुद्धि कर दे, असूचि में सुचित्त बुद्धि करे, दुख में सुख बुद्धि कर दे, अनात्मा में आत्मा बुद्धि करे, उसका नाम है अविद्या। और यह जो अविद्या है, अविद्या के होने से ही ये दुख उत्पन्न होता है। असूचि का अर्थ होता है ये शरीर हमारा अपवित्र है, हाड़ मांस चाम का एक तरह से पिंड है। इस पिंड में सुचित्त बुद्धि हो जाता है। और यह जो शरीर जन्मा है तो मरेगा, इसमें नित्यत्व बुद्धि हो जाती है। इसके बाद में जो दुखमय है उसमें सुख बुद्धि हो जाती है कि देह में सुख है, इंद्रियों के विषय से सुख हासिल होगा, यह सुख बुद्धि भी अविद्या है। और चौथी है या जो अनात्मा है, उस अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि करना। अनात्मा मतलब कि कभी भी यह शरीर हमारा न कभी हुआ है, न होगा, न हो सकता है। यदि हमारे बस में होता जो शरीर है तो आप इसको करोड़ों अरबों खरबों वर्ष तक स्थायी रखते। लोग कोशिश करते भी हैं, पश्चिम जगत में कुछ ऐसे भी आविष्कार किए गए हैं कि शरीर के ऊपर ऐसे दवाओं का लेप करके रखते हैं, और कुछ एक लोगों के रखे भी गए हैं। परंतु यह कितना भी संभालो कभी न कभी यह जीर्ण से नष्ट होगा ही, क्योंकि यह शरीर अनात्मा है। अनात्मा मतलब कि आत्मा से भिन्न है, आपका अपना नहीं, ये तो पंचभूतों का पिंड है। थोड़ा सा पृथ्वी संस लिया, थोड़ा जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, चार भूतों का थोड़ा थोड़ा लिया और पृथ्वी का लिया 50% और बना दिया पिंड। अब इस पिंड में इतना अभिमान हो गया कि यह मेरा, इसी का नाम है अविद्या। और जब अविद्या आती है तो अविद्या से कामना, कामना से कर्म, कर्म से फिर सुख दुख होते हैं, सुख दुख से राग द्वेष, यही संसार का चक्र है। सबके मूल में अविद्या है। जैसे अविद्या आई तुरंत कामना होगी, कामना होगी तो कर्म होगा, कर्म होगा तो सुख दुख फल होंगे, सुख होगा तो राग, दुख होगा तो द्वेष, यही सृष्टि चक्र है। तो यहां पर भगवान शंकर जो अपने गले में हलाहल विष धारण किए हैं, यह निर्विशेष चैतन्य के ऊपर अविद्या का अध्यारोप है। वह जो अविद्या का अध्यारोप है इससे भगवान की शोभा बढ़ती है। मायावच्छिन्न चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। अब माया उपाधि हटा दे तो निर्विशेष चैतन्य है। जैसे जब तक दर्पण के समक्ष कोई उपाधियां नहीं है, नाम रूप नहीं, तब तक निर्विशेष है। जैसे दर्पण के सामने कोई उपाधि आती है, दर्पण में वह दृश्य दिखाई देने लगता है। ऐसे ही ये जो भगवान शंकर ने हलाहल विष को अपने गले में धारण किया तो मानो कि माया को उन्होंने अपने आप में अध्यारोपित कर लिया, क्योंकि माया को, अविद्या को हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। और इसका नाश केवल ज्ञान के द्वारा ही होता है, बिना ज्ञान के नाश हो नहीं सकता है। दूसरा विशेषण दिया था कि भगवान अविद्या को धारण करने के बाद भी भुवन भंग व्यसनिनः, हमारे पास अविद्या होती है तो हम विद्या से परेशान होते हैं और दूसरे कोई परेशानी में डालते हैं। परंतु भगवान की ऐसी विशेषता है, कुछ अविद्या को अपने गले में तो धारण कर लिया और धारण करने के बाद भी भुवन भय भंग व्यसनिनः, अविद्या से ही संसार को खतरा है। जैसे कि देवता और असुर दोनों ने मिल करके प्रयास किया, पुरुषार्थ किया अमृत को हासिल करना, परंतु उनके हाथ में हलाल विष लगा। ऐसे ही चाहे हमारा देश हो या पश्चिम जगत, ये सभी मिल करके नाना प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खोलते हैं, शिक्षा का विस्तार करते हैं। एक ही मकसद होता है कि इससे हमें शांति मिले, अमृत मिले, आनंद की उपलब्धि हो। परंतु हाथ में लगते हैं विनाश के हथियार, एटम बम, परमाणु बम, और लोग तो संसार से भयभीत होकर चंद्र ग्रह पर मंगल ग्रह पर आरक्षित करने लगे हैं, वहां आरक्षण चालू है। परंतु आरक्षण के पूर्व ही ऐसे ऐसे धमाके होते हैं कि आरक्षण करने वाले समाप्त हो जाते हैं। तो देखो, अमृत का मंथन आज भी चल रहा है, क्षीर सागर का मंथन आज भी चल रहा है, परंतु यदि हम भगवान के द्वारा करेंगे, अधिष्ठान चैतन्य को निमित्त बनाकर करेंगे, तब तो अमृत स्रवित होगा, अन्यथा हमारे हाथ में वही हलाहल बीज जैसे हथियार लगेंगे। तो यहाँ पर भगवान शंकर हलाहल बीज रूपी अविद्या को धारण करने के बाद भी संसार के भय को भंग करते रहते हैं। संसार से भय क्यों होता है? इसका उत्तर शुक्ल यजुर्वेदी और बृहदारण्यक उपनिषद में दिया है, सबको मालूम भी होगा। द्वितीयाद्वय भयम् भवति, बस ये भय का सूत्र है। हमारे जीवन में भय क्यों होता है? तो भगवती श्रुति कहती है, द्वितीयाद्वय भयम् भवति, जहां पर द्वैत हुआ वहीं पर भय खड़ा। परिवार में जब तक द्वैत बुद्धि नहीं होती है, तब तक बहुत अच्छी तरह से परिवार सुचारू ढंग से चलता है। जैसे ही द्वैत बुद्धि आ गई कि मैं अलग, मेरा धंधा अलग, पिताजी का धंधा अलग, छोटे भाई का धंधा अलग, उसकी पत्नी अलग, उसके बच्चे अलग, बस एक दूसरे से भय, भय आने के बाद बचाव करते हैं, अपना खाता छिपा के रखते हैं ताकि छोटे भाई को पता न चले। जहां पर द्वैत बुद्धि होती है वहीं से भयोत्पत्ति होती है। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने विचार किया, स एकाकी नैव रे में, जैसे आप अकेले होते हैं तो आपको मजा नहीं आता है, सोते हैं दूसरा कोई मिले तो जरा बातचीत करूं, कुछ जो उसके साथ हम इधर उधर भ्रमण करें। ऐसे ही प्रजापति ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, स एकाकी नैव रे में, उनको अकेले जो है आनंद नहीं आया, मजा नहीं आया। द्वितीयो महात्मा स्यात, उन्होंने कामना किया दूसरा हमारे लिए कोई होना चाहिए। जैसे ही द्वितीयो महात्मा स्यात यह संकल्प हुआ, वैसे ही विराट की सृष्टि हुई, संसार विस्तृत हो गया। अब जब यह संसार हो गया तो उनको भी भय लगा। जब भय लगा तो उन्होंने विचार किया, जब प्रजापति ब्रह्मा को द्वितीय से द्वैत से भय हुआ तो विचार किए, विचार करने के बाद भयम वियाय, उनका भय समाप्त। उन्होंने चिंतन किया, एक मेवा द्वितीय आत्मा, वही मैं हूं, इससे भिन्न दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो फिर मैं भयभीत किससे हूं? ये पूरा प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद में मूल में ही उपलब्ध है। शंकर व्यास बड़ा विस्तार किया है, टीकाकार ने भी अच्छा चिंतन किया है। तो आज भी जब द्वैत होता है तभी जाके हम आतंकित होते हैं, भयभीत होते हैं, और जैसे ही चिंतन करते हैं कि एक मेवा द्वितीय आत्मा है, वही मैं हूं, क्योंकि शांतम शिवम अद्वैतम तुरीयम आत्मा इति मन्यन्ते, शांत शिव अद्वैत, जिसको तुरीय तत्व कहते वही आत्मा है, उस शिव का चिंतन करते भय समाप्त हो जाता है। तो यहां पर तो इस श्लोक में, 14वें श्लोक में अविद्या का अध्यारोप किया, क्योंकि सामान्य नियम है अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते, पहले अध्यारोप होता है बाद में अपवाद, बिना अध्यारोप के अपवाद हो भी नहीं सकता। आपके मन में शंका होनी चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए कि जब वह एक मेवा अद्वितीय आत्मा ही आत्मा है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो फिर सारा प्रपंच क्यों खड़ा किया उसने? यदि संसार नहीं बनाया होता तो इतनी मुसीबतें हमें नहीं आती। लोकवत्त लीला कैवल्यम, जो वेदव्यास भगवान ने ब्रह्म सूत्र में बताया कि वह लीला कर रहा, क्रीड़ा कर रहा, वह तो खेल कर रहा, पर हम लोग परेशान है, रो रहे, भाग रहे, हर तरह की मुसीबतें आ रही है। तो आप उत्तर दिया कि यदि यह सृष्टि न हो तो जीवात्माओं का मोक्ष भी नहीं होगा, इसलिए ये जो सृष्टि है यह भी मोक्षार्थ है कि आप संसार का अनुभव करके और यह समझ लें कि संसार में बिल्कुल रस नहीं है। भगवान राम जब चित्रकूट पधारते हैं तो वहां के ऋषियों महर्षियों ने देखा कि लक्ष्मण जी जंगल से कंदमूल ले आते हैं और भगवती सीता उसको धो करके, सुखा करके, पीस कर अपना रोटी बना के तैयार कर देती हैं। ऋषियों ने सोचा कि हम लोग भी क्यों ना अपने तपस्या से, तपोबल से एक एक सीता बना ले, क्योंकि हमें खुद जंगल जाना पड़ता है, कंदमूल लाना पड़ता है, स्वयं धोना, सुखाना, फिर उसको जो है बनाना, समय भी कम मिलता है, तो एक एक सीता हम बना लेंगे तो हमें भी आराम से राम की तरह से जो है समय मिलेगा, अधिक भजन करेंगे। बस एक बड़ा भारी परिषद हुआ, उस परिषद में निर्णय किया ऋषियों ने कि जो ऋषि जैसे हैं, कोई बहुत लंबा 6 फुट का, 7 फुट का है, कोई जो है 5 फुट का ठेगना है, कोई बहुत स्थूल है, कोई बहुत जो है दुबला पतला है, वह अपने अनुकूल पत्थर को लेकर के और घिसाई का काम शुरू कर दे। सबने शुरू भी कर दिया, इधर शुरू करके सब तैयार हो गए। अब 3 रोज के बाद जो उसमें मंत्र के द्वारा कुल प्राण फूकना था, इतने में ही एक दुर्घटना घटी। रावण जो है बाबा जी का वेश बना करके सीता का हरण कर लिया। अब भगवान राम हासीते हासीते रोने लगे। ऋषियों ने कहा कि पता लगाओ ये राम जी इतने जोर से क्यों रो रहे हैं। पता लगाया, मालूम पड़ा कि सीता जी को रावण ले गया। सबने आपत्कालीन मीटिंग बैठाई, बोले कि देखो सीता रखोगे तो ये दूसरा रावण ले जाएगा हमारे सीता को भी। सब उठा उठा नदी में फेंक दिए। तो देखो पहले अध्यारोप किया, पत्थर का सीता बनाया सबने, परंतु अध्यारोप करते ही तत्काल उन्हें अनुभव भी हो गया। भगवान इसलिए भी जल्दबाजी में लीला की क्योंकि मालूम था कि एक बार सीता में प्राण फूक दिया तो फिर इन्हें भी बहुत कुछ मुसीबत सहना पड़ेगा, इसलिए भगवान दिखा दिए कि सीता को संभालने के लिए सामर्थ्य चाहिए, राम बनना पड़ेगा। राम को उपासना आप करते हैं पर अभी राम नहीं बने हो, तो यहां पर भी जो अध्यारोप किया भगवान शंकर के ऊपर अविद्या का, ऐसे यहां पर जो जीव है, जीव की जो अपनी जैविक अविद्या है, ईश्वरीय जो अविद्या है वह तो समष्टि प्रपंच का उपादान कारण है और निमित्त चैतन्य है, इसको अलग अलग समझ के रखना। जो ईश्वरीय अविद्या है वह तो समष्टि प्रपंच का उपादान कारण है और चैतन्य निमित्त कारण है, और यहां पर जो जीव की अपनी अविद्या है यह भी जैविक प्रपंच का उपादान है, और जो कुटस्थ है, कुटस्थ मतलब मय का जो शोधित अंश है जिसको हम साक्षी भी कहते हैं, कुटस्थ भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, यह निमित्त है। और जैविक सृष्टि ही आपको बंधन में डाल रही, ईश्वरीय सृष्टि किसी के लिए बंधन कारक नहीं है क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। जैसे कि माता पिता कुछ भी करते हैं तो अपने लाड़ले के हित के लिए, किसान खेती करता है, खेती के चारों तरफ कंटीले तार को लगाता है, या कटीले वृक्षों को लगाता है ताकि फसल सुरक्षित रहे। तो भगवान ने कांटा बनाया है, उसका भी मकसद है। कांटा भी अपने आप में सफल है, सार्थक है, पर कांटे का कहां उपयोग करना यह हमारे ऊपर निर्भर है। कांटे को रास्ते में डाल देंगे तो आपको भी चुभेगा, दूसरे को भी, और उसी कांटे के द्वारा खेती के चारों तरफ लगा दें तो सुरक्षा का काम करेगा। तो जो जैविक सृष्टि है, जिसको कि हमने बनाया है, वही हमारे लिए बंधन कारक हो गया। भगवान की सृष्टि तो भगवान के लिए कोई बंधन कारक नहीं होती, पर जीव जो सृष्टि किया हो उसके लिए बंधन कारक हो गई। जब किसी भी घर में, किसी भी समुदाय वर्ग मजहब में जब बालक उत्पन्न होता है और बिल्कुल निर्गुण निर्विशेष होता है, उसको यह भी भान नहीं होता है कि मैं जो है हिंदू हूं कि मुसलमान हूं कि इंडियन हूं कि अमेरिकन हूं, कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। जैसे ही दो चार वर्ष का हुआ कि हम धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि तो जो है इंडियन है, अमेरिकन है, जापानीज है, इसके बाद भी संतोष नहीं होता है तो कहते कि तू जो है हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है।